ఉద్వోడు కామోహం అప్రతాచ తవాత్మజా అప్రాచ తవాత్మజా ఆవయోరనురూపోసౌ ఆవయో అనురూపోసౌ ఆద్యో వైవాహికో విధి. ऋषि परम साधु करदम ने वाच कहा बाणम एवमस्तु उद्वोडु कामः विवाह का इच्छुक अहम मैं अप्रता अन्य किसी से वचनबद्ध न होना च तथा तव तुम्हारी आत्मजा पुत्री आवयो हम दोनों का अनुरूप उपयुक्त असौ यह आद्य प्रथम वैवाहिक विवाह का विधि अनुष्ठान. अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभिषेण भक्तजन स्वामी शिल प्रपाद शिल प्रपाद की. अनुवाद महामुनि ने उत्तर दिया, निसंदेह मैं विवाह का इच्छुक हूं और आपकी कन्या ने न किसी से विवाह किया है और न ही किसी दूसरे को वचन दिया है, अतः वैदिक पद्धति अनुसार हम दोनों का विवाह हो सकता है. तात्पर्य स्वयंभू मनु की कन्या को स्वीकार करने के पूर्व कर्दमुनि के समक्ष विचारणीय बातें अनेक थी. प्रथम तो यह कि देवहूति ने उन्हीं के साथ विवाह करने का निश्चय कर रखा था. वह अन्य किसी को अपना पति बनाना नहीं चाह रही थी. यह सबसे बड़ी विचारणीय बात थी, क्योंकि जब कोई स्त्री प्रथम दर्शन पर ही किसी पुरुष को अपना मन अर्पित कर देती है तो उसे वापस लेना कठिन होता है. यही स्त्रियों का मनोविज्ञान है. साथ इसके पूर्व उसका विवाह भी नहीं हुआ था, वह कुंवारी थी. इन सब बातों से कर्दमुनि ने उसे स्वीकार कर लिया, अतः उन्होंने कहा हां विवाह के धार्मिक नियम के अनुसार मुझे आपकी कन्या स्वीकार है. विवाह के भी कई प्रकार है. उत्तम ब्याह वह है जिसमें उपयुक्त वर को बुलाकर कन्या को वस्त्रों तथा आभूषणों से दहेज देकर कन्या अर्पित की जाती है. यदि वो कन्या बलपूर्वक हरी जाकर बाद में पत्नी रूप में स्वीकार कर ली जाती है तो उसे भी विवाह मानते हैं. किंतु कर्दम मुनि ने विवाह की उत्तम प्रणाली स्वीकार की, क्योंकि कन्या का पिता चाह रहा था और वह कन्या भी योग्य थी. उसने किसी अन्य के साथ प्रेम नहीं किया था। इन सब बातों से कर्दम मुनि को स्वयंभू मनु की कन्या को ग्रहण करने के लिए राजी हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पदरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। असाधु साधुनादाय नाति नीचो ततारक हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत् कंठयोस्पुरः। ऋषि उवाच बाणम उद्धोडुकामोहम अप्रतः चतवात्मजा आवयो अनुरूपोऽसौ आद्यो वैवाहिको विधि। जैसे किसी अन्य किसी भक्त की कथा थी नियम के अनुसार, परंतु थोड़ी आपातकालीन व्यवस्था है, उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अचानक मुझे अभी कहा गया कि आप जाकर बोलिए, तो मैं भी अभी आपके साथ में इस श्लोक को देख रहा हूं। तो श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद जो विसर्ग का वर्णन करता है, जिसे द्वितीय सृष्टि कहते हैं, सर्ग अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषणम उतया मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। श्रीमद् भागवत के 10 विषय में से दूसरा विषय विसर्ग द्वितीय सृष्टि। तो प्रथम सृष्टि भगवान के, द्वितीय सृष्टि भगवान के ही आदेश पर भगवान की कृपा से भगवान द्वारा शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा जी की है, और उस ब्रह्मा जी की सृष्टि का लगभग कह सकते ये फर्स्ट मैरिज सेरेमनी आद्य वैवाहिक विधि। तो आद्य के दोनों अर्थ होते हैं ऐसे, तो विवाह का अलग प्रकार, उसमें से पहला जो प्रकार है इसीलिए उसको आद्य कहा गया, प्रथम विवाह वैवाहिक विधि। परंतु उसका दूसरा अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि इस सृष्टि में सबसे पहला जो विवाह हो स्वयंभू मनु जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, और ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु से जो प्रथम संतान उत्पन्न हुई है, प्रियव्रत उत्तानपाद और फिर यहां आकृति प्रसूति देवहूति, तो सर्वप्रथम जो वर्णन किया है देवहूति का वर्णन कर रहे हैं, जो इस वैवाहिक संस्कार को स्वीकार किया जिसने, तो लगभग पूर्व कुछ श्लोकों में हम स्वयंभू मनु के वचन सुने जिसमें सर्वप्रथम तो वे करदम ऋषि की स्तुति किए, वंदना किए, उनको नमस्कार किए और अपने सौभाग्य का स्मरण कर रहे हैं कि कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महान ऋषि मुनि का दर्शन हुआ। और तत्पश्चात अपना जो प्रमुख आशय है, जिस आशय से आए थे, उस आशय को प्रकट किए जो उनकी पुत्री के साथ करदम मुनि का विवाह, यह जो विषय था। तो कुछ लोगों में वह इस माता देवहूति के अलग गुणों का वर्णन किए कि किस तरह से बिल्कुल आपके अत्यंत योग्य है, यह प्रियवृत्तानपादो स्वसेयं दुहिता मम अन्विच्छति पतिम युक्तम वयशील गुणादिवि, जो अन्विच्छति पतिम, जो अन्वेषण कर रही है, जो पति की कामना कर रही है, और ऐसी स्त्री जो आपके ठीक अनुरूप है। अब आज के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, बाह्य दृष्टिकोण से, देवहूति और करदम का विवाह, देवहूति लगभग आप कह सकते कि स्वयंभू मनु जो लगभग संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा कहलाते हैं, और उन स्वयंभू मनु की यह पुत्री थी जिसका अन्यत्र अलग अलग श्लोकों में वर्णन किया, उसके ऐश्वर्य का मतलब राजकुमारी थी, जब गेंद खेलती थी बताया जाता है तो देवता भी विस्मित हो जाते थे उसके सौंदर्य को देखकर, देवहूति के तो अप्रतिम सौंदर्य, बहुत ही सुंदरी और समस्त ऐश्वर्य से युक्त, इतना राजसी ऐश्वर्य था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और वह इतने ऐश्वर्य से युक्त लगभग मतलब धन में सौंदर्य में कोई इनकी बराबरी न कर सके, ऐसी यह देवहूति की। परंतु वह माता देवहूति का जो विवाह करवाया जा रहा है यहां पर, तो स्वाभाविक है कि आज संसार में इस तरह का अगर कोई जिसका पास सौंदर्य जितना धन हो, तो स्वाभाविक वह भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो बाहरी इन गुणों को रखता हो, जो बहुत धनवान हो, बहुत सौंदर्यवान हो। परंतु इसके ठीक विपरीत स्वयंभू मनु देवहूति के लिए यहां पर करदम ऋषि का चयन किए हम देखते हैं। तो कहां उनका राजसी ऐश्वर्य, यहां पर अभी बिंदु सरोवर के समीप जब आए तो जहां करदम ऋषि रहे तो एकदम तपस्वी वेश उनका, जटाओं से युक्त वे करदम ऋषि थे, और धन तो कुछ किंचित मात्र कोई धन नहीं था, एकदम पूर्ण विरक्त। तो बाह्य दृष्टि से देखा जाए मतलब आजकल जिससे कहा जाता है, स्पष्ट रूप से कहा जाए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पहले होता है कि फाइनेंस देखा जाता है, बैंक बैलेंस कितना है, जॉब प्रोफेशन देखा जाता है, परंतु यहां पर करदम ऋषि के उन कार्यों को नहीं देखा गया। ये वास्तविक धन जो है वह आध्यात्मिक बल है, तो उसको देखकर यहां पर करदम ऋषि का वहां चयन किया माता देवहूति ने। तो अंततः फिर जब स्वयंभू मनु कहे कि एक तो ये दोनों और से मतलब एक तो देवहूति स्वयं गुणों से युक्त है, वह विवाह की अभिलाषा करती है, और मन वह आपको पति के रूप में स्वीकार करने का निश्चय कर चुकी है, और इतना ही नहीं आप भी विवाह के लिए इच्छुक हैं, यह हमको भी ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें जानकारी प्राप्त हुई है, तो इसीलिए यह अत्यंत उपयुक्त है। तब करदम ऋषि यहां पर अपनी सहमति जता रहे, बाढ़ उद्वोड़ का हम अप्रता चतवात्मजा, आवयन रूपोत्सव आद्य वैवाहिक विधि, कि आपने जो कहा बिल्कुल मेरे मन में जो रहा बिल्कुल उसी प्रकार से आप कहे कि उद्वोड़ काम अहम, मैं विवाह के लिए इच्छुक हूं और अप्रत चतवात मजा, और आपकी पुत्री ने अभी तक किसी को अन्य किसी के साथ विवाह करने का निश्चय नहीं किया है। तो कुछ दिनों पूर्व भी हम इस विषय सुन रहे थे प्राण गोविंद प्रभु से, लगभग कहा जाता है कि जिससे शिल्प उपाध यहाँ पर स्त्री की एक मनोवृत्ति होती है, जिसे आप अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, जिस तरह से भगवान सृष्टि किए, तो स्त्री का एक स्वभाव होता है कि सहज रूप से जिस किसी प्रथम व्यक्ति पर उसका मन आकर्षित होता है उसके प्रति उसकी निष्ठा फिर सदैव बनी रहती है लगभग आजीवन, और अन्यत्र फिर कहीं उसका मन नहीं जाता है। तो यह देवहूति अभी तक अन्य किसी पुरुष के विषय में विचार भी नहीं की, तो स्वाभाविक है कि इसने किसी को अपने मन में स्वीकार नहीं किया है, इसलिए यह विवाह करना अत्यंत उपयुक्त है। यहां पर वो बतला रहे, तो मैं अन्य दृष्टि से भी सोच रहा था कि श्रीमद् भागवत में प्रत्येक प्रसंग जो है उसको दो अलग अलग प्रकार से लिया जाता है, एक लीला के अनुसार भी उसका एक अलग अलग शिक्षाएं होती है, अलग अलग जो लीला है जो प्रसंगवश, जैसे यहां पर करदम देवहूति का विवाह है तो वर्णाश्रम का वर्णन आदि किया जा रहा है, तो अलग अलग लीलाएं होती है, जो कृष्ण की लीला है उसमें पूतना उद्धार किया भगवान ने, या फिर अनर्घ असुर का उद्धार किया तो वह भी लीला है, तो अलग अलग लीला होती है, तो उस लीला को हम सुनते हैं तो लीलाओं में भी अलग अलग शिक्षाएं होती है। साथ ही में श्री मध्वाचार्य कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का प्रत्येक प्रसंग कह सकते हैं, श्रीमद् भागवत का प्रत्येक श्लोक, श्रीमद् भागवत का प्रत्येक शब्द प्रमुख रूप से जो साधक है, जो भगवत भक्ति कर रहा है, जो भगवत कृपा प्राप्त करने का इच्छुक है, तो उसके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपादेय शिक्षाएं भी होती है। तो दोनों दृष्टिकोण से देखना चाहिए, मध्वाचार्य कहते हैं कि एक तो होता है कि उस लीला को हम वर्णन सुन रहे हैं, जैसे पूतना उद्धार का वर्णन सुना, अगासुर का उद्धार किए, धेनुकासुर का उद्धार किए, परंतु उसी को फिर जब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन किए उन लीलाओं का, तो उस लीलाओं में वे कहते हैं कि किस तरह से पूतना उद्धार, मतलब जितने भी असुरों का भगवान ने वध किया वृंदावन में, उस समस्त असुर हमारे हृदय के विभिन्न प्रकार के अनर्थों का प्रतीक है, और एक प्रामाणिक गुरु, एक भगवान के शुद्ध भक्त के मुखारविंद से जब उन कथाओं का श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर की वह आंसुरी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती है। तो पूरा ग्रंथ ही है अंग्रेजी में डीमंस इन वृंदावन करके, वृंदावन के समस्त असुर का वर्णन, और हर असुर कौन से अनर्थ को दिखाता है। शायद जन्माष्टमी समय वो कुछ वक्त व्हाट्सएप में भेजे थे, आप शायद कोई देखे होंगे, तो हर असुर जैसे पूतना के विषय में आ जाएगी, जो छल करने वाला जो गुरु होता है ढोंगी गुरु, जो छद्म वेश धारण करके, पर बाह्य साधु का वेश होता है परंतु आंतरिक वृत्ति जो है वो आसुरी हो, तो पूतना भी उसी प्रकार से बाह्य रूप से एक ब्रजवासी का गोपी का रूप धारण की थी परंतु अंदर से वो भगवान का हनन करना चाहती थी। तो वह गुरु जो भगवान का ही वध करना चाहता है, मतलब भगवान के स्थान पर अपने स्वयं को रखना चाहे, ऐसी जो वृत्ति है यह पूतना वृत्ति कहलाती है। धेनुकासुर मतलब गर्दभ, जो गधे की वृत्ति होती है, जो कठोर परिश्रम करता है और मानव जीवन के मूल लक्ष्य का विस्मरण करके गधी के साथ भोग विलास में अत्यधिक आसक्त होता है, तो यह वृत्ति जो है यह धेनुकासुर वृत्ति कहते हैं। यह एक मैं दृष्टांत दे रहा हूं समझाने के लिए कि कैसे भागवत का एक ही प्रसंग दो प्रकार से देखा जाता है। तो उसी प्रकार से यहां पर यह करदम देवहूति परिणय जो बतलाया गया है, एक तो वर्णाश्रम की शिक्षा आप सुन रहे थे पिछले सप्ताह, परंतु दूसरे दृष्टिकोण से इसे जब बतलाया जाता है कि एक पति और पत्नी का यहां जब संबंध स्थापित हो रहा है तो इसको भक्त के जीवन में किस तरह से सीखा जा सकता है, तो कहा जाता है कि पति मतलब प्रमुख रूप से कहा जाए गुरु, और पत्नी अर्थात शिष्य। तो कर्दम और देवहूति का जो बीच में जो आदान प्रदान है, जो पारस्परिक संबंध का वर्णन यहां पर किया जा रहा है, यह विशेष रूप से गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है उसको भी दर्शाता है। किस तरह से जब कोई भगवत कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए अति आवश्यक है कि वह गुरु का आश्रय ग्रहण करें। और इसलिए श्री रूप गोस्वामी भक्तिरसाम सिंधु में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया, 64 में से सर्वप्रथम जो चार अंग का वर्णन किया, तो वहां पर लिखते हैं कि प्रथम चार अंग को अनिवार्य कहा गया है। अन्य जितने भी भक्ति के अंग है वह क्या है हिंदी में, ऑप्शनल, ऑप्शनल समझते हैं, मतलब क्या कहते हैं, पर्यायवाचक, मतलब उसमें से कुछ अंगों को किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है भक्ति में, परंतु प्रथम चार जो अनिवार्य ही है, और वो प्रथम चार जब तक न करो तो भक्ति का शुभारंभ ही नहीं होता है। और चारों अंग कौन से, तो वहां पर गोस्वामी बताते हैं गुरुपादाश्रय प्रथम जो अंग है भक्ति का, सबसे 64 में प्रथम जो सोपान है गुरुपादाश्रय, गुरु का आश्रय लेना। दूसरा गुरु शिक्षा दीक्षा आदि ग्रहणम, जिसे कहते हैं गुरु के द्वारा शिक्षा और फिर विधिवत रूप से दीक्षा को ग्रहण करें। शुश्रूषया सेवा तीसरा भक्ति का अंग, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दैन्य भाव से युक्त होकर पूर्ण समर्पण के साथ गुरु की सेवा करना। और चौथा होता है सद्धर्म प्रच्छा, गुरु से फिर जिज्ञासा करना अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए। और इन चार को श्री रूप गोस्वामी का ये अनिवार्य है। तो भक्ति का एक तरह से कहते हैं शुभारंभ तभी होता है जब गुरु का आश्रय लेता है, वह अति आवश्यक है। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह भक्तिमय जीवन में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो प्रसंग है, यहां से जो प्रारंभ हो रहा है, यह प्रसंग में उस प्रकार से शिक्षाओं को भी ग्रहण किया जा सकता है। किस प्रकार से देवहूति का कर्दम ऋषि के प्रति जो भाव था, जिस प्रकार का देवहूति का कर्दम ऋषि के प्रति सेवा भाव था, जिस प्रकार का समर्पण था, जिस प्रकार की निष्ठा थी, वैसे निष्ठा वैसा समर्पण वैसे सेवा भाव की अपेक्षा की जाती है शिष्य से जब वो गुरु का आश्रय लेता है। तो मैं एक ही शब्द यहां भी देखा था, बाढ़ उद्दोड़ कामोहम। तो सबसे पहले भी इसी को उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहां पर कर्दम ऋषि कह रहे कि बाढ़ उद्दोड़ कामोहम, कि मैं भी संबंध स्थापित करने के लिए इच्छुक हूं, मुझे विवाह करना ही है। तो एक तरह से यह संबंध जिसको टू वे होता है ना, दोनों तरफ दो तरफा होता है कि एक तरफा नहीं होता है। तो वैसे ही शिष्य गुरु का चयन करता है यह आवश्यक, परंतु गुरु भी शिष्य को स्वीकार करना अति आवश्यक है। जब तक गुरु स्वीकार न करे, शिष्य भले ही मानसिक रूप से कितना भी कह दे कि ये मेरे गुरु है, जिस तरह से महाभारत में वर्णन आता है एकलव्य का, जो मन ही मन द्रोणाचार्य को स्वीकार कर लिए थे परंतु द्रोणाचार्य ने स्वीकार नहीं किया। तो शिक्षा कुछ प्राप्त किए परंतु कृपा प्राप्त नहीं हुई उन्हें। तो वैसे ही कभी कभी कुछ तर्क किया जाता है, ऐसे कुछ अल्पज्ञ लोग भी होते हैं जो कभी कभी कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से गुरु को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, ठीक है, जिसको ऋत्विक सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें इस प्रकार की मान्यता है कि गुरु जो चार दोषों से पूर्ण मुक्त होना चाहिए पूर्णतः, तो जो जिसमें दोष होगा गुरु होने के योग्य नहीं है, तो फिर इस धरातल पर कोई भी गुरु बनने योग्य नहीं है। तो इसलिए पूर्व में जो महाजन हुए, जो आचार्य हुए, उनसे वे अप्रत्यक्ष रूप से दीक्षा आदि ग्रहण करते हैं, परंतु जब तक गुरु स्वयं स्वीकार न करे तब तक शिष्य भले कितना भी मान ले परंतु संबंध पूर्ण होता ही नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह दीक्षा पूर्ण हो ही नहीं सकती जब तक गुरु खुद न कहे, जिसको मन में यह स्वीकार कर ले मैं वैष्णव प्रभुपाद से दीक्षा लेना चाहता हूं, इस तरह जो मान्यता है, तो हम भले ही शिल प्रभुपाद कहें हम उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना चाहते, परंतु शिल प्रभुपाद को स्वीकार करना चाहिए ना। तो इसीलिए यह संबंध जो दोनों तरफ से होता है, इसलिए इस्कॉन में भी हम देखते हैं जब कोई भक्त दीक्षा के योग्य बन जाता है तो पहले दीक्षा का प्रशिक्षण लिया जाता है योग्य रूप से, और जब एक निश्चित काल तक वह जब अपनी प्रतिबद्धता को क्या कह सकते कमिटमेंट यानी प्रूव हिज कमिटमेंट फॉर द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अपना प्रतिबद्धता को जब अच्छे से प्रमाणित कर देता है तो फिर वह गुरु अपने मन में स्वीकार करता है कि ये गुरु का मेरे जो चयन करना है, और अंततः उस गुरु के पास जाता है। तब एक विधि होती है जिसे कहते गुरु आश्रय। गुरु आश्रय मतलब जो गुरु फिर देखता है कि हाँ ये शिष्य योग्य कि नहीं, ठीक है मैं इसे दीक्षा देंगे तैयार हूं, तो तब संबंध पूर्ण होता है। तो यहां पर बाड़म उद्वोड़ काम तो करदम मुनि अपनी सहमति जतला रहे हैं किसके प्रति, उस देवहूति के प्रति। कौन सा विशेष गुण उसका? अप्रताच तवात्मजा, कि उसने एक स्त्री का ये विशेष जो गुण है, तो स्त्रियों के जो गुण है विशेष से आप श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में देखते हैं जहां पर माता कुंती की प्रार्थनाओं का वर्णन किया गया है, और वहां पर कुंती महारानी जब भगवान की वंदना करती है नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वर प्रकृति परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वसित माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षम अव्ययम न लक्ष्यस्य मूढ दृशा नटो नाट्यधर तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। वह भगवान श्री कृष्ण की वंदना करने लगी कुंती महारानी, जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण किस प्रकार से पांच पांडव और उत्तरा के गर्भ का रक्षा किए और अपने ऐश्वर्य को भगवान अपनी भगवत्ता को जो प्रदर्शित किए, तो ऐश्वर्य से युक्त तो होकर कुंती महारानी प्रार्थना करने लगी। प्रमुख रूप से वह भगवान का संग प्राप्त करना चाहती, भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए भगवान को रोक रही थी क्योंकि भगवान रथ पर आरूढ़ हो चुके थे और भगवान जाने के लिए तत्पर थे द्वारका। तो कुंती महारानी रोकने लगी तो वह कहती कि मैं उन आदि पुरुष श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ जो तीन गुणों से परे है, प्रकृति से परे है, जो सभी के द्वारा अलक्षित है, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहि अवस्थितम, जो सभी के अंदर भी अवस्थित है, सभी जीवों के हृदय में भी वास करते और बाहर भी वास करते परंतु फिर भी अलक्षित है, मतलब कण कण में है, प्रत्येक स्थान पर है परंतु फिर भी अलक्षित है। क्यों अलक्षित है? तो फिर दूसरे श्लोक में थे माया जवनिका आछन्नम, जवनिका जवनिका मतलब पर्दा, माया का पर्दा जब आंखों के सामने आ जाता है आछन्नम अज्ञ अदोक्षजम अव्ययम, जो अज्ञ है जो अज्ञानी लोग हैं उनके आंखों के सामने माया का पर्दा रहता है, इसीलिए वह अदोक्षज जो इंद्रियों के अनुभव के परे है उन भगवान श्री कृष्ण का अनुभव नहीं कर पाते। हालांकि भगवान हमारे समक्ष है परंतु बीच में पर्दा है, जैसे यहां पर अभी आप अभी तो भोग लग गया है, पर जो भोग लगता है तो पर्दा लग जाता है ना, आप देखिए तो पर्दा रहता है भगवान का दर्शन। उसी प्रकार से जीव किस सबसे अधिक समय भगवान है परंतु फिर भी अनुभव जीव नहीं करता है, तो कौन कौन कर सकते? तो कहते तथा परमहंसानाम मुनि नाम अमलात्मनाम, जो परमहंस है जो केवल इस संसार का जो सार है, इस संसार का जो सार कृष्ण भावना है उसको ग्रहण करके जो संसार में जितना कुछ असार है उसको त्याग देते हैं। हंस का एक गुण होता है, हंस केवल दूध और पानी को मिलाकर दिया जाए तो कहते कि हंस बराबर केवल दूध ही लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो ऐसे इस संसार में जो असार वस्तु है जड़ पदार्थ का त्याग करके चिन्मय आध्यात्मिक विषय को जो ग्रहण करे उसको परमहंस कहा गया है भगवत भक्तों। तो ये परमहंस है, मुनि है जो निरंतर भगवान का मनन चिंतन करते हैं। और तीसरा गुण बताया अमल आत्मनाम, अमल जो मल से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं ऐसे जीव किस प्रकार से भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा आपका अनुभव कर सकते हैं। और वहां फिर कुंती माने रहती है, ऐसे बड़े बड़े जो महान भक्त है, जो परमहंस है, जो अमल आत्मा है, जो मुनि जन है, वो भक्ति योग की विधि से आपको देख पाते। कथम पश्ये मही स्त्रिय, हम जैसी स्त्री आपको भला कैसे जान सकती है। हम कोई परमहंस नहीं, हम बहुत बड़े कोई विद्वान नहीं है। और वहां पर श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य दी कि वास्तविक एक तरह से देखा जाए स्त्रियों में सबसे अधिक योग्यता है भगवत कृपा प्राप्त करने की। आप देखें, क्योंकि जो जो एक भगवत भक्ति के लिए, यहां पर जो मैं विषय कहना चाह रहा था कि शिष्य में जो गुण आवश्यक है वह सभी गुण स्त्री के स्वभाव में सहज रूप से होते हैं। जो दैन्यता होनी चाहिए, जो सेवा भाव होना चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, स्त्री में एक स्वाभाविक गुण होता है कि वो सहज समर्पण उनमें आ जाता है। जिसको हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे कि कहते हैं वुमन आर मोर इमोशनल एंड मैन इज रैशनल, कहते हैं कि भावना प्रधान होता है स्त्रियों का जो स्वभाव होता है, और परंतु पुरुष में उतनी भावनाओं का अभाव रहता है। तो पुरुष जो तुरंत समर्पित नहीं हो पाता है, उसमें वो शरणागति तुरंत नहीं आती है, परंतु स्त्रियों में एक सहज रूप से शरणागति आती है। और सबसे प्रमुख यहां पर जो बात बताई, अप्रता च तवात्मजा, कि आपकी निष्ठा, आपकी जो मतलब स्त्री का मन, आपकी पुत्री का मन और किसी में नहीं है। तो इसी प्रकार से एक जो शिष्य होता है उसकी निष्ठा आवश्यक है, विशेष रूप से गुरु के प्रति, गुरु के जो वचन है उसके प्रति निष्ठा जब होती है तो यह गुरु की कृपा को बहुत जल्दी आकर्षित करता है। इसलिए हम प्रतिदिन जब प्रार्थना भी करते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्म वंदो मुई सावधान मते, कि श्री गुरु के चरण कमलों की वंदना की गई वहां पर, तो बहुत ही सुंदर शब्द, केवल भक्ति सद्म, सद्म अर्थात सद्म किसे कहते हैं, सद्म शब्द और भी जगह आता है ना, चिंतामणि प्रकर सद्मसु, और यहां पे सद्म मतलब सदन, सदन आप कहते हैं निवास स्थान, कोई निवास स्थान होता है उसको सद्म कहते हैं। चिंतान चिंतामणि प्रकर सद्मसु, जो चिंतामणि से जो भवन बने हुए हैं भगवान के धाम में, तो वैसे यहां पर श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति, भक्ति का एकमेव परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है श्री गुरु चरण कमल। मतलब और कोई जगह पे शायद आप दो एड्रेस लिखते ना, एक परमानेंट एड्रेस एक टेम्पररी एड्रेस होता है, तो टेम्पररी एड्रेस पे कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे। तो अन्य स्थान पे भक्ति प्राप्त होंगी कि नहीं, ये डाउटफुल है, संशयास्पद है कि मिलेंगे, परंतु एक स्थान है जहां पर गारंटी है, 100% गारंटी, वहां पर भक्ति रहती है, सदैव निवास करती है। कहां पर? तो कहा श्री गुरु चरण पद्म केवल, और केवल शब्द है, तो दूसरे शब्द में कहा जाए कि केवल वहीं पर मिलेंगी, दूसरी जगह नहीं मिलेंगी। कि गुरु के चरणों का आश्रय यदि छोड़ दिया जाए और यह विचार करे कि भक्ति मिल जाए, तो दोनों एकदम विरोधाभास है, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए गुरु के चरण कमल का आश्रय जो ले भक्ति प्राप्त करे, तो कैसे भक्ति प्राप्त होगी, तो उसके लिए दो योग्यता आवश्यक है, वंदो मुई सावधान मते। ये हर शब्द के ऊपर बहुत लगभग, ये केवल पहला जो शब्द है परम पूज्य गौर गोविंद महाराज श्री गुरु चरण पद्म, इस एक शब्द के ऊपर उन्होंने एक प्रवचन पूरा दिया है, एक ग्रंथ लिखा हुआ है, गुरु वंदना नामक ग्रंथ है, जिसमें बहुत विस्तृत रूप से ये व्याख्या की है। परंतु अन्य जो दो शब्द, उस पर मैं विचार कर रहा था जब मैंने ये अप्रता शब्द देखा, वंदो मुई सावधान मते, कि यह दो अति आवश्यक जो शब्द है यहां पर, वंदो, वंदो अर्थात जिसको कहते वंदना, जैसे श्री गुरु वंदना करते ना, हाथ जोड़कर नमस्कार, यह वंदो, और दूसरा शब्द वहां पर सावधान, मुई, मुई मतलब मैं, ये थोड़ा इन्होंने बंगाली को अलग प्रकार से लिखते हो, वो ये हिंदी टाइपिंग करने वालों को काफी कुछ दोष है। जहार प्रसाद भाई नहीं हो शायद, भाई है क्या सनातन? हाँ जहार, हाँ भाई है कि भाई है? जहार प्रसाद भाई, वो भाई नहीं है, इन्होंने भाई लिख दिया। तो ठीक है, मैं जो शब्द बंधु मुई सावधान है उस पर विचार कर रहा था कि प्रमुख रूप से आप देखेंगे जब कोई भी सैनिक है, जब सैनिक प्रशिक्षण ले जाते, जैसे कहते हैं आप आर्मी ट्रेनिंग कहते हैं ना, आर्मी का जब ट्रेनिंग होता है तो उसमें दो चीजें बहुत आवश्यक आप देखेंगे कि जब आर्मी में जाते हैं, जो नया जो विद्यार्थी जो भर्ती होता है वहां पर, तो जैसे भर्ती होते उनको विशेष प्रशिक्षण के लिए सुबह दौड़ाया जाता है, अलग अलग प्रकार की कसरत करवाई जाती है आपने देखेंगे, और उस समय दौड़ा तो पूरे एक लाइन में सबको खड़ा कर देते हैं, और जब सब एक लाइन में खड़े हो जाएंगे तो वहां पे फिर वो जो प्रमुख होता है उनका, जो भी सेना प्रमुख होता है जो प्रशिक्षण देता है, वो सभी को कुछ निर्देश देता है कि इस प्रकार से ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, और पूरा निर्देश जब बता दिया तो उस निर्देश के बाद में वो तुरंत पूछता है किसी का कोई सवाल, ऐसा पूछता है ना, किसी को प्रश्न है क्या, और सब एकदम बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। परंतु कोई नया विद्यार्थी आया, वो जैसे सुनता है कि किसी कोई प्रश्न, जैसे भागवतम क्लास में होता है ना, भागवतम क्लास के उपरांत हम पूछते हैं किसी कोई प्रश्न, तो इसका प्रश्न होता है हाथ ऊपर कर प्रश्न पूछता है। परंतु सेना का जब वो प्रशिक्षण होता है उसमें जब वो प्रमुख कहे कि किसी का कोई प्रश्न है क्या, और किसी ने हाथ ऊपर कर दिया, समझो हाथ ऊपर कर दिया कि हाँ, अब पूछा गया कि किसी का सवाल, तो किसी ने हाथ ऊपर करके कहा कि मेरा कोई सवाल है, तो उसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है, तुम एक तरफ साइड में आ जाओ, और सबको तो ठीक है तुम अपना प्रशिक्षण किया, उसको क्या करते फिर, जिसने हाथ ऊपर किया था उसको कहते कि पूरा एक बोरा अपने सर पर रखो, 10 किलो का कि 15-20 किलो का बोरा रख के जाके और थोड़ा 4-5 किलोमीटर दौड़ लगा के आ जाओ। बहुत ही विचित्र लगता है बाहरी रूप से देखा जाए। अब वो जो उनकी शिक्षा के उन्होंने कहा कि प्रश्न है क्या, जो व्यक्ति प्रश्न पूछना चाहता है उसने हाथ ऊपर किया प्रामाणिकता से, उसको बोले कि वो बोरा उठा के जाओ दौड़ करो, तुम्हारा अभी भी तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं होना, थोड़ा और दौड़ लगा। तो बहुत विचित्र यह व्यवहार जब प्रतीत होता है इस तरह से, कैसे क्यों किया जाता है। तो प्रमुख रूप से सेना में जो प्रशिक्षण दिया जाता है दो चीज बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला होता है कि पूर्ण समर्पण, जिसे कहते हैं वंदो, वंदो मतलब वंदना, कि समर्पण पूर्ण होना चाहिए गुरु के प्रति, गुरु के वाणी के प्रति। क्यों? क्योंकि प्रमुख रूप से देखा जाता है कि जब सेना का प्रशिक्षण लिया जाता है और अंततः जब युद्ध के लिए जाते हैं, ये युद्ध के समय में यदि पूर्ण समर्पण न हो जाए, सिखा जाए कि तुरंत यहां करो जो क्रियाओं को कही जाती है, आक्रमण करो या इस दिशा में जाओ उस दिशा में, जो उनका आदेश दिया तुरंत यदि वो पालन नहीं करते हैं, और उनमें आपस में सेना के युद्ध करते समय यदि मतभेद हो गया, मतलब जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और उसमें भारत के जितने सैनिक, उसमें एक जो प्रमुख है जो जनरल होता है उसने कुछ आदेश दिया और उस सैनिकों पर आपस में मतभेद है, तो क्या होगा? तो युद्ध में विजय हो नहीं पाएंगे, संभावना है कि जो दूसरा पक्ष है वे विजय हो जाएंगे। तो उस समय सबसे अधिक आवश्यक है जब युद्ध चल रहा है कि वह उनका समर्पण हो उस व्यक्ति के प्रति जिससे वह शिक्षा ग्रहण किया, पूर्ण समर्पण, अन्यथा फिर उनकी मृत्यु हो सकती है। और दूसरा है कि वहां पर प्रशिक्षण में दो चीज होती है, सरेंडर, आर्मी ट्रेनिंग में जो दो चीज कहते हैं ना, एक होता है कि ओबीडियंस और सेकंड होता है डिसिप्लिन, कहते हैं सावधान, ऐसे कहते हैं विश्राम सावधान, कहते हैं सावधान मतलब एकदम सीधा खड़े हो जाते हो, विश्राम में पैर फैला कर सावधान में, और बेल्ट वगैरह भी टाइट कर लेते हैं। तो उसी तरह से शिष्य शब्द का अर्थ है शिस्त, जो शासन को जीवन में स्वीकार करे और शिस्त से चले उसको शिष्य कहा गया, शासन में तो अनुशासन को जो ग्रहण करे और शिस्तता जिसमें रहे। तो वहां अति आवश्यक होता है कि थोड़ा सा भी किंचित मात्र भी लापरवाही रही, विशेष रूप से जब वो सेना में प्रशिक्षण लेते हैं, थोड़ी भी अगर ढिलाई रही, थोड़ा आलस रहा, तो फिर जो शत्रु पक्ष है वो अधिक आपके ऊपर हावी हो सकता है, आपको पराजित कर देगा। तो वैसे ही शिष्य में यह प्रमुख गुण अति आवश्यक है कि वो समर्पण हो और अनुशासन से बद्ध उसका जीवन हो, तो वह गुरु की कृपा को तुरंत आकर्षित करता है। जिस तरह यहां पर कर्दम ऋषि कह रहे आवन रूप आद्यो वैवाहिक विधि, कि यह बिल्कुल मेरे अनुरूप है क्योंकि इसका मन और कहीं अभी विचलित न हुआ है, तो मन पूर्ण मुझ में इसका स्थिर है, इसीलिए मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो और भी कुछ विषय इसको हम कल विस्तृत रूप से कहेंगे वैवाहिक विधि के ऊपर, मतलब स्त्री में प्रमुख रूप से कौन से गुण होते हैं जो शिष्य में भी होने चाहिए। यदि वह जिस तरह स्त्री एक पति को स्वीकार करना चाहती है, शिष्य गुरु की कृपा स्वीकार करना चाहते हैं, तो कौन से गुण आवश्यक है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी को टीका टिप्पणी? स्वयं मनु का विवाह हाँ, सृष्टि के उपरांत अलग अलग सृष्टि बताइए ना, जो
नारद मुनि ने उनको कहा था, नारद मुनि ने उनको पता था ना कर्दम मुनि के बारे में। इसके पहले नारद मुनि का एक जन्म हुआ था, उसमें उनकी माता भी थी,
पूर्व कल्पों का।
अच्छा, पूर्व कल्प।
नारद मुनि का पूर्व कल्प में वो जो दासी पुत्र जो है,
यहाँ पर मनु महाराज जो है स्वयं वो राजा है।
प्रजा भी तैयार करने के लिए तो हो रहा है ना, प्रजा की शुरुआत होती है सबसे स्वयं, मतलब दिया गया ना किसे वराह भगवान का पूरा अवतार का वर्णन इसके पूर्व के अध्याय में जब हुआ है, तो पहले स्वयंभू मनु और जो पहला है पुरुष और पहली स्त्री स्वयंभू मनु शत्रुप, तो उनकी सृष्टि हुई और अब ये सबसे पहली बैच है। आगे वर्णन आता कि ये जो केवल पांच जन है, प्रियव्रत उत्तान पद आकृति प्रसूति और देवहूति, ये पांच से पूरा ब्रह्मांड भर गया। जितना ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, जितने भी अलग अलग जितने भी कुल और वंश प्रारंभ हुए, इन पांच से प्रारंभ है सब, ऐसे कहा जाता है श्रीमद् भागवत।
अगले कल्प में बने?
नहीं नहीं, इसी कल्प में ना, नारद मुनि तो इसी कल्प में, इसके पूर्व जो कल्प हुए थे ये स्वयंभू मनु के पूर्व के कल्प में वह दासी पुत्र थे, परंतु इस कल्प में जो एक डायरेक्ट वो ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट हुए ना,
इस कल्प में।
तो चार कुमार है, नारद मुनि है,
नारद
ये सब
पिछले कल्प का भी याद है,
मानस पुत्र हाँ उनका दिया है, वो प्रथम स्कंद में दिया गया है कि देवदत्ता इमा वीणा सर ब्रह्म विभूषिता, क्या है शब्द कि अविस्मृति ऐसा शब्द वहां पर स्पष्ट रूप से दिया है कि भगवान विशेष आशीर्वाद दिए कि तुम कल्प कल्पांतर होने के उपरांत भी तुम्हारी स्मृति नष्ट नहीं होगी। तो पूर्व कल्प में पूर्व युग में तुम किस रूप में थे और क्या क्या हुआ सब कुछ तुम्हें यथारूप स्मरण रहेगा भगवान। हरे कृष्ण यंत्रा श्रीमद भागवतम की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की शिल प्रभुपाद की शिल प्रभुपाद हरे कृष्णा मूवी फेस्टिवल की।